दंडोत बंदन अनकुवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो हो त्यों नानक दास बोले ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी साध संगत जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की विशेष कृपा है कि उन्होंने हम लोगों को इस संसार से तैरने के लिए इस संसार सागर में जो हम लोग डूब रहे हैं उससे बचने के लिए सुखमनी एक जहाज के समान है। हम लोग सुखमनि का आसरा लेकर इस संसार सागर से तरकर परमात्मा के धाम में जा सकते हैं। ऐसा समझो सुखमनि आपके जीवन का सार है, सबके जीवन का सार है। जिसने सुखमनि का आसरा लिया ओट लिया वह व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है। परम सुख अर्थात परमात्मा, परम सुख अर्थात ब्रह्म ज्ञान, परम सुख जीवन का लक्ष्य है। जो सदा सुख परम सुख को प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है, उसका दोबारा जन्म मरण नहीं होता, वह तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है। आज का उपदेश साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं कि यह सारा संसार मिथ्या है। सब कुछ जो आँखों से दिखता है, जो कानों से सुना जाता है, जो हाथों के पकड़ में आता है जो नाक से सूंघा जाता है, जो चमड़ी से अनुभव होता है, पांच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो जाना जाता है, पांच कर्म इंद्रियों के माध्यम से जो पकड़ा जाता है, ये सब कुछ मिथ्या है। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, एक अद्वितीय परमात्मा के अलावे और कुछ भी नहीं है, और जो भी कुछ है वह स्वप्ने से ज्यादा नहीं। एक समय की बात है, राजा जनक को स्वप्न आया। स्वप्न में वो देखता क्या है कि कोई राजा हमारे ऊपर अटैक किया है और हमारे राजपाट को खोल लिया है। और हमको नगर से निकाल दिया है। मैं दर दर भटक रहा हूँ, मैं रोटी के लिए भी तरस रहा हूँ, मुझे कहीं से कोई आसरा नहीं मिलता। और उसके बाद राजा जनक देखता क्या है अपने को कि भूख के कारण, प्यास के कारण मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। अचानक उसकी नींद टूटती है, वो देखता है कि यह सारा राज्य तो उसी तरह से। वह गहन विचार में पड़ गया कि जो जस्ट नाव अभी देख रहा था वो सत्य है कि ये सत्य है, क्योंकि सत्य तो एक ही होगा, सत्य दो चार नहीं होता, सत्य तो एक परमात्मा है, एक वाहिगुरु है, अकाल पुरुष है, उसके अलावे और कोई सत्य नहीं। राजा जनक बहुत चिंता में पड़ गया कि मैं वो हूँ जो दर दर भीख मांग रहा हूँ, रोटी के लिए तरस रहा हूँ, मैं वो हूँ कि ये हूँ। मंत्रियों को बुलाया, सियाने को बुलाया, तरह तरह के लोगों को बुलाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, किसी ने इस प्रश्न के हल को समझा नहीं पाया तसल्लीपूर्वक। राजा जनक ने अनाउंस कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो मुझको इस रहस्य को बता देगा कि वो स्वप्न सत्य है जो देख रहा था या ये जगत सत्य है, जो इस रहस्य को बता देगा उसको मैं सब कुछ दे दूंगा, जो मांगेगा उसे वो दे दूंगा, और जो नहीं बता पाएगा उसको मैं कैद खाने में डाल दूंगा और दंड दी जाएगी। साध संगत जी, दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत महापुरुष आए और इस रहस्य को बताने का कोशिश किया, स्वप्न के बारे में, जगत के बारे में, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। एक लड़का 13 बरस का बालक जिसका नाम है अष्टावक्र, अष्टावक्र उसका नाम इसलिए पड़ा, ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई ऐसी बात हो सकती है आपके जीवन को लग जाए और आपका जीवन जो है एकदम पूर्ण रूप से बदल जाए, जीव से ब्रह्म हो जाओ, धरती से उस परम पद को पालो जहाँ के लिए सारे साधनाएं हैं, सारी भक्ति है, सारा सुमरण है, सारी सेवाएं। अष्टावक्र उसका नाम इसलिए रखा गया कि उसके शरीर के 8 अंग टेढ़े थे, नाक टेढ़ा था, हाथ टेढ़ा था, पांव टेढ़ा था, गर्दन टेढ़ी थी, 8 अंग शरीर का टेढ़ा था। उसका पिता, अष्टावक्र के पिता वेद का पाठ कर रहे थे और ये माता के गर्भ में था। माता के गर्भ में, क्योंकि उसकी पत्नी जब पाठ करते थे उसके पति वेद का, उसकी पत्नी बैठ के सुना करती थी प्रेम से। आज तो ये हालत है, पति पत्नी कट्ठे बैठ के राजी नहीं है, प्रेम का बहुत अभाव हो गया है। परिवार के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठ के कोई राजी नहीं, इसमें दोनों का दोष है। एनीवे, अष्टावक्र की माँ वेद का पाठ सुन रही है। अष्टावक्र अभी गर्भ में है, उसके पिता ने कहीं वेद का पाठ करते करते गलत पाठ कर गया। अंदर से ही अष्टावक्र कहता है, पिताजी आप गलत पाठ कर रहे हैं, क्योंकि उसको माँ के गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। इसीलिए जब लोग हमारे पास आते हैं, मैं कहता हूँ कि जब बच्चा गर्भ में हो तो अपने कमरे में गुरु नानक देव जी का फोटो लगाओ, गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र लगाओ, और जब सोवो तो उनका ध्यान करके, उठो उनका ध्यान कर। जो तुम्हारा पुत्र पैदा होगा वो भी भक्ति वाला होगा, सूरवीर होगा। माँ प्रथम गुरु होता है बच्चे के लिए। माँ जैसा संस्कार पाएगी बच्चे को, बच्चा वैसा बनेगा। माँ के गर्भ में है अष्टावक्र, पिता को कहता है कि पिताजी आप गलत पाठ कर रहे हैं। पिता को क्रोध आ गया। कभी कभी छोटे बच्चे कोई सत्य बात कह दे ना तो झुंझलाहट हो जाता है, यानी मैं 80 साल का, 90 साल का, तू मुझे शिक्षा देने लगा है। ऐसा होता है, हर एक के जीवन में होता है, होता है कि नहीं? आप उसको भी ऐसा अहंकार को चोट पड़ा कि अभी गर्भ में है और हमको शिक्षा दे रहा है, बाहर आके क्या करेगा। उसने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पैदा लोगे तो तुम्हारा 8 अंग टेढ़ा होगा। क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है, क्योंकि क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती। सात संगत जी समय पाकर के अष्टावक्र पैदा हुआ, उसका 8 अंग टेढ़ा था, लेकिन शरीर के टेढ़ा मेढ़ा होने से ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा थोड़े होता है। उसका पिता भी राजा जनक के दरबार में बंदी बनाया गया, कैद खाने में, क्योंकि उसने भी प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाया था। अष्टावक्र पूछता है अपनी माँ से, पिताजी कितने दिन हो गए, हमारे पिताजी कहाँ हैं? हे माँ बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? उनकी माँ के आंखों में आंसू आ गया, बेटा वो कहीं गए, आ जाएंगे। नहीं नहीं सच सच बताओ, क्या बात? बच्चा का स्वभाव है ना जिद करना। अंत में कहना ही पड़ा कि तुम्हारे पिताजी राजा जनक के दरबार में बंदी हैं, जेल खाने में। क्यों माँ? राजा ने एक प्रश्न पूछा है कि जो मैं स्वप्न देख रहा था वो सत्य है कि ये सत्य है, और ये भी शर्त रखें जो नहीं बताएगा उसको बंदी बना ली जाएगी, जेल खाने में डाल दिया। तुम्हारा पिता भी सही सही नहीं बता पाया और उसे जेल डाल दिया गया। अष्टावक्र कहता है, 13 बरस का बालक, माँ मैं इसका उत्तर दूंगा, मैं जाता हूँ राजदरबार में। माँ कहती है, बेटा मैं तो पति को जो है जेल खाने में डाला गया है, अब तू भी जेल खाने चला जाएगा। जब बड़े बड़े विद्वान दे नहीं पाए तू कैसे दे पाएगा? माँ मैं अवश्य जाऊँगा। जिद कर लिया, चला गया जी। राजा जनक सिंहासन पर बैठा है, सारी जनताएं, बड़े बड़े विद्वान दोनों तरफ बैठे। जब अष्टावक्र आता है अंदर, 8 अंग टेढ़ा है, चलता है तो पूरा झूलता है झूले की तरह, और बहुत ही शान से वो राजा की तरफ जा रहा है। राजा के पास अभी पहुंच ही रहा था कि सारे लोग देख करके हंस पड़े। 13 वर्ष का बालक अष्टावक्र कहता है राजा जनक को, जनक मैं तो समझा था कि तुमने विद्वानों की सभा बुलाए हो, बड़े बड़े महापुरुषों की सभा बुलाए हो, मैंने ये समझा था, मुझे क्या पता था तुमने चमारों की सभा बुलाया। ये हमारे चमड़ी को देख रहे हैं, मेरे शरीर को देख रहे हैं। राजन, शरीर के टेढ़ा मेढ़ा होने से ज्ञान टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। हे राजन, घड़े के टेढ़ा मेढ़ा होने से घड़े के अंदर जो खाली जगह है, आकाश स्पेस, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। हे राजन, इसी तरह से आत्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है। शरीर का आकार हो सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का कोई आकार नहीं है। हे राजन, यदि तुम्हारी इच्छा है रहस्य को जानने का, मैं तुम्हें बता सकता हूं। राजा कांप गया 13 वर्ष के बालक को देख के और उसकी सच्चाई को देख के। बात तो ठीक कह रहा है। देखो, ज्ञान किस व्यक्ति को होता है, कितनी जिज्ञासा वाले को होता है। राजा ने अपने सिंहासन से नीचे उतरा और 13 वर्ष के बालक के आगे उसको राज सिंहासन पर बैठाया। कहता है, आप राज सिंहासन पर बैठो। राज सिंहासन पर बैठा करके 13 वर्ष के बालक को आप लंबे पढ़ के नमस्कार करता है और कहता है, कथम ज्ञानम अवापनोति, कि मुझे ब्रह्म ज्ञान कैसे हो जाए। कथम ज्ञानम अवापनोति वैराग्यम च कथम प्राप्तम। और ज्ञान वैराग्य के बगैर नहीं होता, इसलिए मैं वैराग्यवान कैसे हूं। और ज्ञान और वैराग्य के बगैर मुक्ति नहीं होती, मैं मुक्त कैसे हूं इस संसार सागर से। 3 प्रश्न पूछता है। एतद ब्रूहि मम प्रभो। 13 वर्ष के बालक को राजा जनक, उम्र में भी बड़ा है, सब कुछ में बड़ा है ज्ञान के अलावे, 13 वर्ष के बालक को प्रभु बोलता है। ईश्वर तें गुरुमय अधिक धारे भक्ति सुजान, गुरु परमेश्वर एक को जान। वो गुरु को प्रभु कहता, हे प्रभु, एतद ब्रूहि मम प्रभु, हमको आप कृपा करके बताएं। वहां पर 13 वर्ष का बालक अष्टावक्र कहता है, हे राजन, मुक्तिम इच्छसि चेतात, हे तात, हे बच्चा। राजा जनक 60 साल का है, अष्टावक्र 13 साल का है। 13 वर्ष का बालक 60 साल राजा को कहता है, बच्चा, हे बच्चे, मुक्तिम इच्छसि चेतात, यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो विष्यान विश्वत त्यज, विषयों को जहर के समान समझ के त्याग दो और 5 चीजों को अपने जीवन में धारण कर लो, क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम, पीयूष वत भज। इन 5 चीजों को अमृत समझ के पी लो, तेरी मुक्ति हो जाएगी। पहला तो विषयों को जहर समझ के त्याग दो, और क्षमा। क्षमा क्या है ठीक से समझना। आज का मनुष्य वैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष, अपनी टोकरी में लेके हर एक फिर रहा है। सास बहू का जो है ईर्ष्या द्वेष, बहू सास का, पुत्र समाज का, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ अपनी टोकरी में लेके जरूर फिर रहा है। आज से 10 साल पहले इसके घर गया था तो इसने हमको चाय पानी नहीं पूछा, हमारे घर में आएगा मैं बैठने नहीं बोलेंगे। 10 साल पहले का अभी रखा हुआ है। 10 साल पहले मुझको इसने गाली दिया था, जिंदगी में किसी वक्त भी मौका मिलेगा मैं 10 गाली देंगे इसको। हम एक वैर विरोध का जो है ना मस्तक पर लेके फिर रहे हैं और चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान, चाहते हैं गुरु से जुड़ना, असंभव। भांडा धोए बैस धूप देवो तव दुधय को जावा, पहले भांडे को एकदम खाली करना है। क्षमा क्या है, दो चीजों को समझो। यदि तुमसे कोई गलती हो गया है, तुमने किसी के दिल को दुखाया है, या तुमने किसी को भला बुरा बोले हो, तो जाके क्षमा मांग के आओ। यदि हल्का होना चाहते हो, यदि प्रभु से जुड़ना चाहते हो, तो जाके क्षमा मांग के आओ। और यदि किसी ने तुमको कुछ कहा है, किसी ने गाली दिया, किसी ने अपमान किया है, किसी ने मारा है, तो उसको क्षमा कर दो। तुमने गलती की है तो जाके क्षमा मांग लो, और किसी ने तुमको कुछ कहा है उसको क्षमा कर दो। दो बातें, आधा बोझ हल्का हो जाएगा, और परमात्मा के मार्ग में जाने से में बहुत आसानी हो जाएगी। और अष्टावक्र ने ये पहला बोला है, ये अमृत को पहला बोला है, क्षमा। क्षमा कर देने से, क्षमा मांग लेने से आप लाइट हो जाओगे, बहुत हल्के हो जाओगे। क्योंकि यात्रा स्वयं की करनी है और अंदर की यात्रा करनी है। और कल से जो सुबह का ध्यान क्लास चल रहा है, अंतर यात्रा, आत्म अनुभूति, क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवय परम तत्व है, सबके अंदर सुप्रीम बीइंग है, और मृत्यु से पहले उसे अनुभव करना है। जो व्यक्ति उसको अनुभव कर लेगा वो वही हो जाएगा। अष्टावक्र जी कहते हैं पांच चीजों को अमृत समझ के पी लो, जिसमें पहला है क्षमा, दूसरा है आर्जव। आर्जव कहते हैं सरलता, बहुत सरल। जिन लोगों ने भी परमात्मा को पाया है आज तक, वो बहुत सरल लोग हुए हैं। नामदेव को देखो, और कपड़े पर रंगाई का काम करते थे, छपाई का। कबीर को देखो, सारा दिन कपड़े बुनते हैं, शाम को बेचने आते जाते हैं। रविदास जी को देखो, हमारे गुरु साहिबान को देखो, कितने सरल थे, अंदरों निर्मल बाहरों निर्मल। भोले भाई मिले रघुराया, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट मोहि न भाव। जो बहुत सरल है, बी इन फैंसी, बी चाइल्ड लाइक, एक महीने के बच्चे जैसा सरल। एक छः महीने के बच्चे को एक थप्पड़ मारो और आधे घंटे के बाद प्यार से बुलाओ, झटा जाएगा गोद में। लेकिन हमको आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, वो सात जन्म याद रखेंगे। एक थप्पड़ मारा था, जब तक 10 थप्पड़ ना मार लें, हमारी मर्दानगी क्या है, अपनी मर्दानगी दिखाते। ये विकार है क्षमा आर्जव। आर्जव का मतलब होता है सरलता। भोले भाई मिले रघुराय, अति सरल होना है। ये जो बड़े बड़े जो दिशा है लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग, चतुराई ना चतुर भुज पाइए। जो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े सियाने पीछे रह जाते हैं, और सरल लोग उसको पा लेते हैं। क्षमा आर्जव, दया, और जीवों के प्रति दया हो। दया धर्म का मूल है। जो व्यक्ति कष्ट में है, जो व्यक्ति किसी भी कारणों से दुखी है, उसके दुख को दूर करने का जब यदि कोई व्यक्ति देख के भी नहीं करता कोशिश, तो समझो पत्थर है। दया धर्म का मूल है। क्षमा आर्जव दया। एक संत एक नदी के किनारे बैठे थे, एक बिच्छू जा रहा था पानी में बहता हुआ। तो संत उस बिच्छू को बाहर करते हैं, वो हाथ से बाहर करते हैं कि भाई ये पानी में मर जाएगा, वो बिच्छू डंस मार देता है। फिर वो बाहर करते हैं, वहाँ एक आदमी था वो देख रहा था ये सारा कुछ। वो आके कहता है, संत जी कुछ पढ़ लिख लेना था मेरे जैसा, आपको इतना भी नहीं पता है कि ये जानवर है, ये बिच्छू है, बार बार डंस मार रहा है, ये तो आपको जान मार देगा, इसका स्वभाव ऐसा है डंस मारना। वो संत कहते हैं, ये जानवर होके अपना स्वभाव नहीं बदलता, मैं इंसान होके मैं अपना स्वभाव कैसे बदलूं, दया धर्म का मूल है। क्षमा आर्जव दया तोष, तोष कहते हैं संतोष को, संतुष्ट सततम योगी। भगवान कृष्ण ने से पूछा कि सबसे बड़ा योगी कौन है, जो जंगल में जाकर के सारे कपड़े वगैरह त्याग करके धुनी रमा लेता है वो योगी होगा? भगवान कृष्ण कहते ना, संतुष्ट सततम योगी, जो आए हरख न गए सोग, जब राज देह ता कवन बड़ाई, जो भीख मंगावे तो क्या घट जाए, जो हर एक अवस्था में संतुष्ट रहता है, मान अपमान जिसके ऊपर परिस्थितियां हावी नहीं हो पाता है, जो परिस्थितियों का दास नहीं, जिसको परिस्थितियां डुला नहीं पाता, ऐसा जो व्यक्ति है वो योगी है, संतोष। हाँ, कल बहुत बड़ी कार हो जाएगी तो कल एंजॉय करें, लेकिन कल के कारण आज को क्यों खराब करें? कल बहुत मकान हो जाएगा चार तो कल भी एंजॉय करेंगे, लेकिन आज कल के कारण वर्तमान को नहीं बेचना है, एंजॉय द प्रेजेंट, वर्तमान में रहने का कोशिश करो। मैं कहता हूं किसी के पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत कारें हैं, तो वो अहंकार का अपना बोझ लेके फिरे, तुम्हारे पास अभी रोटी खाया है ना, अभी कपड़े पहने हो ना, तो यदि तुम अभी जी रहे हो वर्तमान में तो तुम राजा हो, बिन संतोष नहीं कोई राजा है। राजा तो वो है जिसके अंदर कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं है। राजा होके भी मांगता है तो वो भिखारी ही है, और भिखारी होकर के भी यदि मांग नहीं है उसके अंदर तो वो राजा है। इसीलिए भिक्षु को, संत को हम सम्मान देते हैं, क्यों? क्योंकि पल्ले रिजक न बंदे पंछी ते दरवेश, पंछी और दरवेश भोजन लेके नहीं चलता, जहां जाता उसके लिए 36 प्रकार भोजन तैयार। संतोष जीवन में, संतोष हो, क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम, और सत्य के मार्ग पर चलना है। सत्यम सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की विजय होती है। और साहेब गुरु नानक देव जी महाराज ने जीवन का रहस्य बताए हैं कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक सच परमात्मा है, परमात्मा सत्य है, और सत्य के मार्ग पर चलोगे तो सत्य प्राप्त होगा। असत्य के मार्ग पर चलकर, झूठ के मार्ग पर चल के सत्य नहीं मिल सकता, सत्य के मार्ग पर ही सत्य मिला जा सकता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, मुक्तिम इच्छसि चेतात, हे तात, हे बच्चा, यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो विषयों को जहर समझ के त्याग दो, और क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम, ये पांच को अमृत समझ के पी लो, मुक्ति तुम्हारा दास हो जाएगा। और कहते हैं कि उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। आगे बड़ी लंबी कहा, एक है एब्सोल्यूट ट्रुथ और दूसरा है अपीयरेंस। एब्सोल्यूट ट्रुथ मीन्स परम सत्य सुखमनी, और दूसरा है अपीयरेंस, अपीयरेंस का भाव ये है आभास, उसको माया भी कह दो। ये जो सारा संसार जो तुमको दिख रहा है, ये ना सत्य है ना असत्य है, झूठा भी नहीं है। यदि झूठा हो तो हमको दिखेगा। अब कोई का ये हारमोनियम नहीं है तो कोई मानेगा? भाई जी, कोई आके कह दे ये हारमोनियम नहीं है, ये फूल नहीं है, ये सारा कुछ नहीं है, ये झूठ है, तो एक बार कह दोगे चलो हाँ, लेकिन अंदर से जान रहे हो ये तो सत्य सामने दिखाई दे रहा है, हम झूठ कैसे कह दें? तो ये झूठ नहीं है, असत्य नहीं है और सत्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों कालों में नहीं रहता है। गुरु नानक देव जी महाराज सत्य की परिभाषा करते हैं, जो पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा, वही एक सत्य है, उसके अलावे कोई सत्य नहीं। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, त्रय काल अबाधिस्तम सा सत्यम, जो तीनों कालों में एक जैसा हो वो सत्य है। और असत्य की परिभाषा क्या है? जो तीनों कालों में ना हो वो असत्य है, लेकिन जो प्रतीत हो अज्ञान के समय में और ज्ञान के समय में ना हो उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे आप कभी कभी रेगिस्तान में जाओ जहां पर रेता ही रेता बहुत हो, तो दोपहर के समय में आप जाओगे ना तो सामने लगेगा कि पानी है। मृग तृष्णा कहते हैं ना उसको, है जी? हाँ हाँ जी, वो दूर से ऐसा लगेगा कि पानी है, आप पास में जाओगे पानी नहीं होगा। दिखता है पानी लेकिन होता नहीं है। जो सिर्फ दिखे और वास्तविक में ना हो उसको मिथ्या कहते हैं। दिखता है कि पत्नी से सुख मिलेगा लेकिन जाते हैं तो वहां दुख हाथ लगता है। पत्नी सोचती है पति मुझको सुख देगा, एक में क्या सुख है, एक से दो हो जाएंगे तो सुख ही सुख है, लेकिन दो होकर के जिन्होंने देखा है ना वो पूरा मजा ले रहे हैं। जो सुबह भी चार बात सुनते हैं शाम को भी। हमारी बहनें देखो सारा दिन सर्विस भी करती, घर का भी काम करती, फिर भी आदमी रोब जमाते हैं, क्या सुख है। सुख सिर्फ संसार में दिखता है, जैसे रेगिस्तान का पानी दिखता है ना और जाओ तो मिलता नहीं है, ऐसा ही है ये संसार। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। ये जो सारा संसार जो है जैसे सुपना है, सपने के समय में वो सच्चा लगता है। जब कोई भी आदमी सपना देखता है ना तो जिस वेले आप सपना देखते हो उस वेले झूठ नजर आता है? किसी को झूठ नजर नहीं आता। सपने के समय में सब कुछ सच नजर आता है, लेकिन जब जाग जाते हैं तो मैं कहते हैं मैं मूर्ख था, मैं जो है ना सपने में डर रहा था, भाग रहा था, मैं सपने में कंगाल हो गया था। अपने को बोलता, किसी को नहीं बोलता। इसी तरह से ये संसार में जो भी चल फिर रहा है ना आदमी, समझो सपने में देख रहा है, जाग के सपना देख रहा है। किसी गुरु के द्वारा, किसी संत के द्वारा, किसी ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा जब तुमको ब्रह्म ज्ञान होगा तब तुम किसी को मूर्ख नहीं कहोगे, अपने को मूर्ख कहोगे कि मैं कैसा मूर्ख था जो इस जगत को सत्य बोलता था। आहा, सत्य तो एक वाहिगुरु है, एक अकाल पुरुष सत्य है, और वो अकाल पुरुष कहीं नहीं, हमारे आत्मा रूप से हमारे अंदर है। जब आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो ये सारा संसार आपको मिथ्या प्रतीत हो जाएगा। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। अष्टावक्र जी कहते हैं हे जनक, ना वो सत्य है ना ये सत्य है। जो सपना जो तुम देख रहा था कि मैं भिखारी हो गया और रोटी के बगैर तरस रहा हूं, पानी नहीं मिल रहा, गिर पड़े हो, जो तू देख रहा था वो सत्य नहीं है, और ये भी सत्य नहीं है। हे राजन, ये दोनों को जो देखने वाला साक्षी आत्मा है वो सत्य है। सात संगत जी, सभय घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, कौन है जो बोल सकता है। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या कोई करे अभिमाना, जब अपनी जोत खींचे है तू स्वामी, तो कोई करो दिखा बखियाना। जो श्वास बाहर गई वो अंदर ना आवे, कोई बखियान करके फिर दिखावे जरा जाने। कोई कथाकार बन के, कोई संगीतकार, कोई सियाना बन के दिखावे, जो श्वास बाहर गई वो ना आवे फिर कोई दिखावे। हे सच्चे पातशाह, जो भी कुछ हो रहा है ये तुम्हारी हुक्म से हो रहा है, हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना को। ये सारा संसार जो दिख रहा है ये सब मिथ्या है, ना सत्य है ना असत्य है, मिथ्या है। अज्ञान के समय में जिस दिन तुमको परमात्मा का ज्ञान होगा, ब्रह्म को ज्ञान होगा, उस वक्त वन तृण पर्वत है पार ब्रह्म, फिर सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। बाद में ब्रह्म ज्ञान के बाद, अभी तो ये सब कुछ सत्य लगता है। सच्चाई ये है कि ये सारा संसार स्वप्ने के समान मिथ्या है। इसी चीज को साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आज रहस्य को समझाएंगे। मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, ये जो शरीर है, धन है, कुटुंब परिवार है, सबाया, ये सारे जो है मिथ्या है, ना सत्य है ना असत्य है। प्रतीत होता है लेकिन वास्तविक में नहीं है। मिथ्या हो मैं ममता माया, ये जो अहंकार है मैं सुबह से शाम तक, और जो मोह है ये मेरा और ये मेरा नहीं, ये जो चार को तुम मेरा कहते हो और चार के अलावे को पराया कहते हो, चार के लिए झूठ सच सारे पापड़ बेलते और चार के अलावे के लिए भूखे को रोटी दे के भी जो है नहीं आता। देने का भाव, जिसके अंदर देने का भाव है ना, वो राजा है, और राजा होकर के यदि देने का भाव नहीं है वो भिखारी। कभी कभी कंजूस लोगों के इतने बुरे लगते हैं उसका चेहरा, कंजूस लोग जो है ना बहुत, व्यक्ति तो वो है जो उदार है, जो नहीं कुछ है तो प्रेम तो दे ही सकते हो ना, पानी भी नहीं दे सकते गिलास किसी को, लेकिन मीठा वचन तो बोल सकते, और प्रेम से बड़ा कोई दान नहीं है, सबको अपने हृदय से गले लगाना। हमारे अंदर तो ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है। मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि अपने कमरे में संगत आते हैं ना, 10-5 बैठे होते हैं कभी कभी, मैं किसी से 5 मिनट ज़्यादा बोलने लगूँ ना तो और सारे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। 2 मिनटों में मैं सबका चेहरा देखता हूँ, फिर बातें करते रहता, फिर देखता हूँ क्या रिएक्शन हो रहा है। अंदर से बोलते और रहते हैं कि स्वामी जी को यही प्यारा है, मुँह से जोर से नहीं बोलते, अंदर से बोलते रहते, उसकी बोली को मैं सुनते रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। है जी, कहाँ बैठे हम हैं ये नहीं देखता, इन जिनके साथ बोल रहे हैं उसके अंदर भी मेरी आत्मा है। सत्संग सुनो ने तो जीवन में भी घटाने का कोशिश करो। गुरु महाराज कहते हैं मिथ्या हो मैं ममता माया, ये जो अहंकार है मोह है ये भी माया है। जो दिखे और वास्तविक में ना हो उसको माया कहते हैं। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ा काहे कहो समझाए, मन ही माया है। मन से जो कुछ देखोगे वो संसार नजर आएगा, और मन को परे करके देखोगे तो सब कुछ परमात्मा दिखेगा। ध्यान क्या है? मेडिटेशन मीन्स पुट द माइंड असाइड एंड वॉच, मन को परे करके देखना जगत क्या है, और मन को जैसे ही परे करके देखोगे सब ब्रह्म दिशा है, ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए, आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए, सब प्रभु है, सब वाहेगुरु। यहां पर गुरु महाराज कह रहे हैं मिथ्या राज जोबन धन माल, ये जो राज है, जवानी है, धन है, माल है, जितना ये सब मिथ्या है। मिथ्या काम क्रोध विकराल, ये जो काम क्रोध जो है, काम क्रोध काया को गाले जब कंचन सोहागा ढाले, ये भी कहते मिथ्या है। मिथ्या रथ हस्ती अश्वस्त्रा, रथ हाथी घोड़े और जितने कपड़े जो सुंदर सुंदर पहनते हो ना आप, ये सब शायद ये जो गहने हैं ये भी मिथ्या है, है? मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, ये जितने रंग हैं और जो भी कुछ देख रहे हो, यहाँ साफ गुरु महाराज कहते हैं मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, ये जो भी पेख पेख के देख देख के तुम हंसते हो ना, ये सब मिथ्या है। जो दिशे सो चालनहार, मिथ्या द्रोह मोह अभिमान, ये छल कपट जो करते हो ना, ये भी मिथ्या है। मिथ्या द्रोह मोह अभिमान, मोह जो है विषयों से और अहंकार है, ये सब मिथ्या है। मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, जो अपने ऊपर गुमान करते हैं ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत जवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, पाँव लगता है देखते हो, जिसके पास दो पैसे आ गए ना इधर उधर करके, उसका धरती पे पाँव नहीं लगता। ये जो लोग जितने भी हैं, और अचानक बहुत धन जो आता है ना, वो सच्चाई से नहीं आता, कभी नहीं आता। अचानक जो धन बहुत आएगा वो पता नहीं कितने को हत्या करके, कितने का जेब काट के। और गुरवाणी में आता भी है, मुझे पंक्ति याद नहीं है किस तरह है जी, जो माया आ जाता है अचानक, है जी नहीं। मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साधकी शरण। कहते अस्थिर यदि कोई है ना, ये सब तो मिथ्या हो गया। अस्थिर जो है एक साधु का शरण है। बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जो संत महापुरुषों को देख के बहुत दुख होता है, देखने से दुख होता है। यहाँ पर गुरवाणी कह रहा है कि ये सारा चीज तो मिथ्या है, अस्थिर क्या है, जो परमानेंट रहने वाला क्या है, साधुओं के चरणों में प्रीति। अस्थिर भगत साध की शरण, साध की शरण, कोई महापुरुष का शरण, कोई संत का शरण मिल जाए, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और सच्चा प्रेम तो संत ही कर सकता है। संसार जो प्रेम करेगा ना, उसमें स्वार्थ ज्यादा होगा, प्रेम पुरुम तो कुछ नहीं है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संत जो प्रेम करते हैं उसमें, संत तो देते हैं, दाता होता है। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। क्योंकि संत जो है ना, हमें गुरु से जोड़ते हैं, वाहेगुरु से जोड़ते हैं। संत वही है जो वाहेगुरु से जोड़े, परमात्मा से जोड़े, इसके अलावे और कोई संत नहीं है। जो संसार से जोड़े वो दुनियावी, जो वाहेगुरु से जोड़े वो संत, वो साधु। ऐसे भी कहा गया है कि जो संत होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। प्रॉपर्टी डीलर जानते हैं ना, कुछ तुमको कहते हैं कि थोड़ी भक्ति करो, कुछ परमात्मा को भी कहते हैं कि ज़्यादा आंकड़े ना रहो, जो है थोड़ा झुको, आप भी झुको, है जी। दोनों तरफ से डिस्काउंट कराते हैं संत, है? उससे बेनती करते हैं परमात्मा से, हे वाहेगुरु, थोड़ा भक्त है बेचारा, कि दीन है, हीन है, इसके पास इतनी ताकत नहीं, थोड़ा सा झुक जाओ आप। और इसको भी कहते थोड़ा भजन बढ़ा दो अपना, है जी। दोनों को बोल करके आपस में मिला देते हैं। कमीशन क्या है उनका, संतों का कमीशन है श्रद्धा। जो संतों को श्रद्धा देते हो ना आप, भक्ति और प्रेम करते हो, यही उसका कमीशन है। वो तुमसे कमीशन लेके फिर चले जाते हैं, फिर और जगह जाते हैं। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। हरि का चरण में जो है अपनी प्रीति रखो। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, दूसरे की जो निंदा सुनना है ये भी मिथ्या है। मिथ्या हस्त पर द्रव को हिरह, दूसरे के संपत्ति को छीन लेना, चुरा लेना अपने सुख के लिए, ये भी मिथ्या है। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिरूपाद, दूसरे स्त्री के रूपों को देखना गलत निगाह से, ये भी मिथ्या है। मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, और भोजन का जो है बार बार रसना से पचारे मार के जो है स्वाद लेना, ये भी मिथ्या है। मिथ्या चरण पर विकार को धावे है, दूसरे विकार के लिए दौड़ना, विषय के लिए दौड़ना, ये भी मिथ्या है। मिथ्या मन पर लोभ लुभावे है, और जो मन में जो लोभ है जी, लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ जो है ये भी मिथ्या है। मिथ्या तन नहीं परोपकारा, ये जो शरीर है इस शरीर से परोपकार तभी हो सकता है जिसकी प्रीति प्रभु के चरणों में है, वाहेगुरु का जो हो गया है, उसके पहले तो ये मिथ्या ही है। मिथ्या वास लेत विकारा, कहते हैं इस संसार में जो वासना है और वासना को जो वासना को भोगता है ये भी मिथ्या ही है, ये विकार है। बिन बूझे मिथ्या सब भय, बिन बूझे अर्थात ब्रह्म ज्ञान के बगैर, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, ये बूझे बगैर, सभना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई, ये बूझे बगैर सब मिथ्या है। आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, ये बुझे बगैर सब मिथ्या है। बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल देह नानक हर हर नाम ले, कहते हैं उसका शरीर सफल है, इंद्रियां सफल है, जीना सफल है, जो श्वास श्वास प्रभु के नाम को, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, जो रसना से मन से श्वासों से जो वाहेगुरु का सुमरण करता है, गुरु महाराज कहते हैं सफल देह नानक हर हर नाम ले, जिसने हरि का नाम लिया है वही जो है सो सफल है, बाकी तो सब मिथ्या है। वृथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, ये जो साकत पुरुष है ना, जो साकत कहते किसको है, जो दूसरे में हमेशा खोट देखता है, जो दूसरे में बुराई ढूंढता है, वो साकत पुरुष है। आप मान लेते हैं कि बगुले को आप मानसरोवर ले जाओ, तो मानसरोवर जाकर के बगुला वहां पर क्या मोती चुगेगा, वहां पर भी मच्छी ही खाओगे। और हंस को आप नाली में भी ले आओ तो वहां मोती होगा तो उसको ले लेगा, बाकी और कुछ को नहीं खाएगा। इसीलिए जो सत्पुरुष है, साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है, वो जहां जाता है वो स्वर्ग साथ लेके जाता है, वो स्वर्ग जाता नहीं। संत पुरुष गुरुमुख पुरुष स्वर्ग नहीं जाता, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग आ जाता है, स्वर्ग को साथ लेके जाता है, जहां जाएगा वहां आनंद बांटता है, वहां स्वर्ग क्रिएट हो जाता है। और साकत पुरुष स्वर्ग में भी जाएगा ना, उसको भी नरक बना के आएगा। इसीलिए वृथी साकत की आरजा, जो साकत पुरुष की जो उम्र है ना वो वृथा है, फिजूल है। साकत संग ना कीजिए, दूर हो जाइए भाग। दूर से बहुत 1 किलोमीटर से भी कोई ऐसा आदमी नजर आवे कि इधर उधर की बात करेगा या निंदा चुगली करेगा, दौड़ के भाग जाओ, दौड़ कर। पता नहीं 1 महीने का सत्संग सुना हुआ 1 मिनट में ऐसा जहर घोल दे कि असरधा हो जाए। एक आदमी था, वो जी 1 महीने से सत्संग आता था रोज, उसको किसी ने पता नहीं क्या जहर घोल दिया, वो अनाब छोड़ दिया, नुकसान किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ? वो तुम्हारा हितैषी तो नहीं हुआ जिसने तुमको सत्संग से तोड़ दिया? सत्संग से तोड़ने वाला महापापी होता है और सत्संग से जुड़ने वाला महापुण्यात्मा होता है। बहुत से लोग कहते हैं स्वामी मैं गरीब हूं, मैं क्या दान दूं, मैं क्या एक आदमी को कम से कम जो है सत्संग में तो ला ही सकते हो ना। और जिस दिन एक आदमी को प्रेरणा करके ले आए ना सत्संग में, उस दिन परमात्मा तुमको महादानी कहे, महादानी, इससे बड़ा दानी तुम नहीं। तो इतना दानी तो बन ही सकते हो आप लोग कोई ना। गुरु महाराज कहते हैं वृथी साकत की आर्जा साच बिना कह होवत सुचा, सच के बगैर सुचा कौन है? सुच होवे ता सच पाइए, सच की प्राप्ति तभी हो सकता है जब पहले अंतःकरण शुद्ध हो। गुरु महाराज आगे फिर उपदेश कर रहे हैं, वृथा नाम बिना तन अंध, ये जो शरीर है ये नाम के बगैर जो है ये अंधा है, फिजूल है। वृथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध है। जिस मुंह को बार बार शीशे में देखते हो ना और देख के पाँव नहीं टिकता धरती पर, रात को चार दिन ब्रश ना करो फिर देखो इससे कितनी खुशबू आती है जी। मुख आवत ताकै दुर्गंध है, ऊपरों चिट्टे पोचे नाल पोचिया मुनारा सोना, अंदर लहू पाक मल मूत्र भर गंदा है। बंदा ओह के करे बंदगी ता बंदा चंगा, नहीं तो बंदा गंदे से भी गंदा है। इसके अंदर हड्डी मांस पाक और क्या है, कोई वस्तु खा लो अपनी ही वस्तु और खा करके थोड़ा सा उल्टी आ जाए ना तो अपनी उल्टी देखने का मन नहीं करता। देखो अंदर से ही आया ना, कोई बाहर से तो नहीं आया। फ्रिज में रख दो चीज तो हम बड़े प्यार से खाते हैं, तो इसको भी फ्रिज समझ लो, अंदर गया है चीज और बाहर आया है, प्रेम से खाओ उसको। कोई खाता है? देखने का मन नहीं करता। इसका क्या मतलब है? अंदर जो है सब विकार ही विकार है। वृथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाए। सिमरन के बगैर जो है रात और दिन फिजूल ही जाता है, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। कहते हैं कि जिस तरह से आकाश में बहुत बदल ही बदल होवे और बारिश ना होवे, कहते उस मेघ को की करना है। बहुत से लोग कहते हैं सिर्फ ये गरजता ये बरसता नहीं है, है जी। बहुत से लोग वादा कर देते हैं मैं इतना दान दूंगा इतना दान देंगे। एक आदमी ने चला घर से कि $1,00,000 दान देंगे गुरुद्वारे में, रास्ते में आया तो 50 पर आ गए, फिर 25 पर, जब गुरुद्वारे के बूहे पर आया तो $1 पर आ गए, $1 है जी, $1 गुरुद्वारे में आया तो कहता है मैं किसी को थोड़े कहा, सिर्फ मुझको पता है ना कि देना है, नहीं भी देंगे तो क्या है, है जी। गुरुद्वारे के अंदर आया तो कहता है देना क्या है, सारी दुनिया तो दे ही रहा है, जरूरी मुझको भी देना है। और जब पास में आया ना, मत्था टेकने लगा तो उसका मन लालच में आ गया कि सामने गिरा है, ऐसा ना उठा ही ना लो तो भाग गया वो, मत्था भी नहीं टेक। कहता है उसके मन में इतना नीचे गिर गया, उसके चित्त में आएगा देना तो दूर है, यहाँ से उठा के ना ले जाऊँगा। व्यक्ति जो है बहुत औखा काम है। मेघ बिना ज्यों खेती जाए, बड़ी बड़ी वादाएं करता है, समझे, संतों के पास महापुरुषों के पास ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब समा आता है ना तो खत्म बात। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपन के निरारथ दाम। जैसे जो है कंजूस आदमी है ना, कंजूस आदमी, उसकी संपत्ति को या तो चोर ले जाता है या सरकार ले जाता है टैक्स वगैरह में, या उसके पुत्र जो है ऐश करते हैं। आप तो बेचारा जो है बैल कोल्हों की बैल की तरह सारी जिंदगी कमाता है। जो कंजूस व्यक्ति है ना वो बहुत फिजूल होता है। गोविंद भजन मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपन के निरारथ दाम। जैसे कंजूस आदमी का पैसा बेकार जाता है ना, ऐसे ही मनुष्य की जिंदगी प्रभु भजन के बगैर, गोविंद भजन के बगैर बिरथा जाता है। धन धन ते जन जेह घट बसियो हर नाव, नानक ताके बलबल जाओ। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं, वह व्यक्ति धन्य है, धन्य है उसकी माता, धन्य है उसके पिता, धन्य है वो घर जहाँ पर वो रह करके, जिसके हृदय में वाहिगुरु का नाम बसा है। धन धन तेजन जेह घट बसियो हर नाव, नानक ताके बलबल जाओ। जिसने प्रभु को अपने हृदय में बसा लिया है, कहते हैं व्यक्ति धन्य है। और इस संसार में कोई भी धन्य नहीं है। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंढ लावत, जानन हार प्रभु परवीन, बाहर भेख न काहू भीन, अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्मय मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम भाने तिन प्रभु जाता, नानक उंजन चरण पराता। धन धन तेजन जेह घट बसियो हर नाव, वह व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम है, प्रभु के जो है प्रभु के चरणों में जिसकी प्रीति है, जो प्रभु से कहता है सच्चे पातशाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें जो है आपके चरणों की धूल चाहिए। चरणों की धूल का मतलब ज्ञान भक्ति, हमें सिर्फ वो दे दो और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर इसी चीज को कोई कवि कह रहा है, तुम्हारी याद भी दम भर अलग नहीं होती, तुम्हारा ध्यान भी पल भर जुदा नहीं होता। हे सच्चे पातशाह मुझे ऐसा ध्यान दे, सामत दीजय जित तुझे ध्याई, साबुध दीजय जित विसरह नाही, ऐसी बुद्धि दो कि मैं तुमको ना भुलाऊं, और ऐसी मति दो कि ध्यान करूं तो तुम्हारा ही ध्यान करूं और किसी का ध्यान ना करूं। तुम्हारी याद भी दमभर अलग नहीं होती, तुम्हारा ध्यान भी पल भर जुदा नहीं होता। ऐसा कभी कभी जैसे गोपियां थी ना, गोपियां कभी कभी जब भोजन बनाती थी सब कुछ करती थी, तो कभी कभी ना वो कृष्ण का ध्यान नहीं जाता, वो परमात्मा से प्रार्थना करती थी कभी जो है ना परे हो जाया कर मेरे ध्यान से, वो परे नहीं होते थे। ये प्रेम की एक ही निशानी है, भक्ति के लिए प्रेम बीज है और ब्रह्म ज्ञान के लिए वैराग्य बीज है। बिन वैराग्ना छोटस माया, जीवन में वैराग्य होगा तो ब्रह्म ज्ञान होगा, और जीवन में हृदय में प्रेम होगा तब भक्ति होगी। भक्ति के बगैर प्रीति कहाँ, प्रभु के चरणों में लगाव कहाँ। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि धन धन तेजन जेह घट बसियो हर नाव, वह व्यक्ति धन्य है, सलाहना करने के योग्य है, धन्यवाद है उसको जिसके हृदय में प्रभु का नाम बसता है और कोई ना बसे। और सब चीज़ें जो है सिर्फ व्यवहार के लिए, लेकिन चित्त में जो है ना वही बस जाए, चलते फिरते सोते बैठते जो है हाथ पांव से काम कर चित निरंजन नाल। जिस प्रकार से गांव में स्त्रियां घड़े में पानी भर के जाती हैं, आप चार छह स्त्रियां जो है पानी भर के घड़े में दो दो घड़े तीन तीन घड़े रख लेती हैं और जाती हैं, आपस में बातें भी करती हैं, चार जनासंग बात बतौआ, चीत सो डोरी राख, वो जो चीत सो गागर राखियाली, ये स्त्रियां जो है आपस में बातें भी करती हैं, इठलाती हैं, हंसी मजाक भी करती हैं, लेकिन चित्त जो है गागर में होता है कि गागर न गिर ना जावे। इसी तरह से हमारा जो चित्त है वाहिगुरु के चरणों में, लगा रहें, सब कुछ काम करें, सब कुछ करें, सब कुछ करता हुआ हमारा चित्त उसके साथ जो है लगा रहे, तब जा करके ऐसे लोगों के लिए साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि जिसके घट में हृदय में वाहिगुरु बस गया है, धन धन तेजन जह घट बसियो हर नाम। जिसके हृदय में हरि का नाम बस गया है वो धन्य है, वो धन्य है, वो धन्य है, नानक ताकै बलबल जाऊँ। कहते हैं ऐसे व्यक्ति पर मैं कुर्बान जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, बलहारी जाता हूँ। साध संगत जी, जो व्यक्ति अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत करता है वह व्यक्ति महान है। महानता जो है अंतर यात्रा से होता है, बाहर यात्रा से नहीं। बाहर यात्रा से जो है राख हाथ में लगता है, अंतर यात्रा से वाहेगुरु हाथ में आता है। अब कल से जो ध्यान का क्लास सुबह 6 से 7:15 बजे शुरू हो रही है, एक तो आप लोग समय पर आएँ, 5 मिनट लेट होगा दरवाज़ा बंद हो जाएगा, समझे। ये नहीं कि जो है बहुत से लोग जब कड़ा प्रसाद का बटने का टाइम आता है बहुत से लोग तब आते हैं, समझे, सारा कथा हो जाता, वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि पार्किंग आप लोग यहीं कर लें, पास में ही है, और एड्रेस जो है बाद में आप ले सकते हो। और जो भी ध्यान के क्लास में बताई जाए उसको सारा दिन चिंतन करना है। ध्यानेन सदृशो नास्ति शोधनम पाप कर्मणम। प्रभु के ध्यान के अलावे पाप को जलाने के लिए और कुछ नहीं है। सामत दीजय जित तुझे ध्याई। प्रभु से एक ही विनती करो, हे प्रभु ऐसी मति दो कि मैं तुम्हारा ध्यान करूं और किसी का ध्यान ना करूं। जब आप ऐसी जिंदगी व्यतीत करेंगे आपका लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मिले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।